नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना श्लोक संख्या 22। श्री नारद उवाच इति उक्त्वादि भवो देव भक्षितांकं पिपीलिकैः कमण्डलो जलैन् औक्षत् दिव्येन अमोघराधसा। श्री नारद उवाच इत्युक्त्वादि भवो देव भक्षितांकं पिपीलिकैः कमण्डलो जलैन् औक्षत् दिव्येनामोघराधसा। श्री नारद उवाच इति उक्त्वादि भवो देव भक्षितांकं पिपीलिकैः कमण्डलो जलैन् औक्षत् दिव्येनामोघराधसा। श्री नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर आदि भवो इस ब्रह्मांड का पहला जीवित प्राणी अर्थात ब्रह्मा जी देवः प्रधान देवता भक्षितांकम हिरण्यकशिपु का शरीर जो प्रायः खाया जा चुका था पिपीलिकैः चींटियों द्वारा कमंडलु ब्रह्मा जी के हाथ के जल पात्र से जलेन जल से औक्षत छिड़का दिव्येन आध्यात्मिक अर्थात सामान्य नहीं अमोघ अचूक राधसा जिसकी शक्ति अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति धाम स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी ब्रह्मा जी ने जो अत्यंत शक्तिमान है उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का जिसे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को जीवित किया। तात्पर्य इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त है तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये आदि देव या आदि कवि अर्थात प्रथम सजीव प्राणी को भगवान ने स्वयं हृदय के भीतर से शिक्षा दी थी। उन्हें शिक्षा देने वाला कोई न था किंतु चूंकि भगवान ब्रह्मा के हृदय में स्थित हैं अतएव ब्रह्मा को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। ब्रह्मा जी विशेष रूप से शक्तियाविष्ट होने के कारण जो चाहते हैं उसे करने में अचूक हैं अमोघ राजसा शब्द का अर्थ यही है। वह हिरण्यकशिपु के मूल शरीर को जीवन दान देना चाहते थे, अतएव उन्होंने अपने कमंडल से दिव्य जल छिड़क कर यह कार्य तुरंत कर डाला। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में, और इस श्लोक संख्या 22 और साथ 23 भी कवर करने का प्रयास करेंगे। 23 भी करेंगे क्योंकि दोनों बहुत आपस में रिलेटेड हैं। और तो इस प्रकार से तो इसका अनुवाद इस श्री नारद उवाच इति उक्त्वादि भवो देव भक्षितांकं पिपी लिखे ही कमंडलु जले नोक्ष दिव्ये न अमोघ राजसा। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी ब्रह्मा जी ने जो अत्यंत शक्तिमान है उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को जीवित किया। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में कौन सा जल रहता है? गंगा जी का जो है, जब वामन देव भगवान प्रकट हुए थे और उनके अंगूठे से ब्रह्मांड के में ऊपर के भाग में छिद्र हुआ था, तो बाद में उस गंगा जी को जो है ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भी धारण किया था। इस प्रकार से तो बोलते हैं ब्रह्मा जी जो है कमंडल में चरणामृत भगवान का लेकर के रखते हैं। और बाद में आपको शिव जी ने अपने जटा में धारण किया जब पृथ्वी पे भगीरथ मुनि की तपस्या से आने वाली थी। तो इंग्लिश वाली बुक के अंदर इस जल का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, द स्प्रिंकल ट्रांसेंडेंटल इनफॉलिबल स्पिरिचुअल वाटर फ्रॉम इस कमंडल अपॉन हिरण्यकशिपु'स बॉडी। इसमें लिखा है दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का। तो जो है और 23वां श्लोक इस प्रकार से, उस जल छिड़कने के बाद हुआ क्या हिरण्यकशिपु के शरीर के साथ? कथा प्रसंग आप सबको मालूम ही है कि हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर रहे हैं, बहुत ही भीषण तपस्या, देवताओं के 100 वर्षों तक, और प्रैक्टिकली पैर एक पैर पर खड़े हैं, पैर के जो टोस अंगूठ उंगलियों के भार के ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके, और पूरे शरीर को जो है चींटियों ने और कीड़े मकोड़े इत्यादि ने जो है खा लिया है। और जब ब्रह्मा जी भी आए तो एक बार देख नहीं पाए कि हिरण्यकशिपु कहाँ पर है, और पूरा रक्त मांस मज्जा इत्यादि सब कुछ जो है ये कीड़े मकोड़े चींटियां दीमक इत्यादि खा चुके हैं, और केवल हड्डी है हिरण्यकशिपु का शरीर। तो ब्रह्मा जी तपस्या को देख के बहुत प्रसन्न हुए और जो है अपना दिव्य जल छिड़का। और उसके बाद क्या हुआ तो यह इस श्लोक में बताया गया है, सदत्कीचकवल्मीका सह ओजो बलान्वितः सवार सर्वावय संपन्नो वज्र सहननो युवा उत्थितस्तप्त हेमा वो विभाव सूर्यवैधसः। जो ही ब्रह्मा ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का कि हिरण्यकशिपु उठ बैठा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति भांबी से उस तरह उठ प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप को पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ हो गया था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। अब वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी। यह कायाकल्प उसी कठोर तपस्या का परिणाम था। तो जो श्लोक संख्या 22 है इसमें ब्रह्मा जी के लिए यह वर्ड आया है अमोघ राजसा। अमोघ राजसा का अर्थ है कि जिनकी शक्ति अचूक है या आध्यात्मिक है, ये अचूक है। इंग्लिश में वर्ड लिखा है इनफॉलिबल, अर्थात ब्रह्मा जी भी जो प्लान करते हैं वो अच्युत है या अमोघ है। और इस तात्पर्य प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का ही गुणगान कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड में क्या है, प्रथम जीव है और उन्हें शक्ति प्राप्त है भगवान के द्वारा। कौन सी शक्ति? सृष्टि करने की। भगवान ने प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स इस ब्रह्मांड की रचना के लिए या इस सृष्टि की रचना के लिए प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स भगवान ने जो है सप्लाई किए और ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की कि किस प्रकार से इन इंग्रेडिएंट्स को जो किस प्रकार से इनको अरेंज किया जाए कि ये भौतिक सृष्टि जो है जैसी है वैसी हो सके। तो प्रभुपाद जी ये बोलते थे दैट ब्रह्मा जी चीफ इंजीनियर ऑफ द लॉर्ड। आजकल के लोगों को ही समझ आता है तो भगवान ऐसा वर्ड यूज, प्रभुपाद जी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसलेट करने की उनकी कला है, या आर्किटेक्ट, डिवाइन आर्किटेक्ट। प्रभुपाद इस प्रकार से ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करते हैं। और भागवतम के पहले श्लोक में ये आता है तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, कि ब्रह्मा जी को जो ज्ञान प्रदान हुआ है वो किनसे प्रदान हुआ है, या सृष्टि करने की कला जो प्राप्त हुई है या शक्ति प्राप्त हुई है वो स्वयं भगवान से प्राप्त हुई है। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में अन्य कोई जीव नहीं थे। तो भागवतम के लगभग प्रत्येक स्कंद के अंदर ब्रह्मा जी का वर्णन भी आता है, जिस प्रकार नारद मुनि या इंद्र आदि का वर्णन आता है। लेकिन दूसरे और तीसरे स्कंद में विशेषकर इस सृष्टि लीला का जो है वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। तो दूसरे स्कंद के अंदर जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है बेसिकली, तो उस समय की सृष्टि का वर्णन किया है। और तीसरे स्कंद के अंदर जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है उस समय की सृष्टि का वर्णन किया गया है। और दोनों ही सृष्टि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, और बहुत विस्तृत वर्णन है भागवतम के अंदर जिसको समझ पाना भी आसान नहीं है, भगवान की सृष्टि लीला भी। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के कमल नाल से भगवान ने सब इंग्रेडिएंट सप्लाई करके रखे हुए हैं, और फिर भगवान उस भौतिक सृष्टि में या सागर में है खुद प्रविष्ट होते हैं। कैसे? उनके कमल के नाल से कौन निकलता है? अभी कमल प्रकट होता है, और यही बताया कि वो जो कमल है उसके अंदर भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं। और प्रॉपर तात्पर्य में और एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और वो कमल और कमल की नाल क्या है, वास्तविकता भगवान का विराट रूप है। और उस कमल में कौन प्रकट होते हैं? स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो किसी माता और पिता के संसर्ग से उत्पन्न नहीं हुए वरन स्वयं ही प्रकट हुए हैं एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो आसपास सब बिल्कुल प्रलय का जल है, और ब्रह्मा जी जो हैं बड़े दुविधा के अंदर है कि क्या किया जाए, और आसपास कोई दिख नहीं रहा है उन्हें, और चारों दिशाओं में जो है देख रहे हैं, पूरे अंतरिक्ष की परिक्रमा करके आते हैं और देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये कमल कहाँ से प्रकट हुआ है, इसका स्रोत कहाँ से है, और थोड़े से डर, उनको डर भी लगा हुआ है। और चारों दिशाओं में अवलोकन करने के कारण उनके चार जो है सिर प्रकट होते हैं चारों दिशाओं में ताकि वो देख सकें। और फिर ब्रह्मा जी सोचे कि अच्छा ये मैं कौन हूँ, ये कमल कहाँ से आया है, इसका स्रोत क्या है, देखा जाए। उनको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं वास्तविकता में, वो इतने कंफ्यूज हैं। और फिर जो है वो उस कमल के नाल के अंदर जाते हैं देखने के लिए कि कहां से प्रकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है अभी पूरा प्रयास करने के बाद भी उसको देख नहीं पाते कि कहां उसका प्रारंभ है, उस कमल का जो स्रोत है वो कहां पर है। तो ब्रह्मा जी फाइनली वापस आते हैं और फिर भगवान के चरण कमलों में अपने जो है ध्यान या समाधि लगाते हैं और तपस्या करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो यही स्टेटमेंट जो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, अब भगवान कैसे प्रकट होते हैं, उनके हृदय भगवान का जो स्वरूप है वो उनको साक्षात दर्शन होता है कि भगवान विचित्र बड़ा भगवान का स्वरूप है कि आसपास बिल्कुल समुद्र है, उसमें लहरें उठ रही हैं और भगवान क्या कर रहे हैं उन गहरी लहरों के अंदर जो है इतनी भयानक लहरें उत्पन्न हो रही हैं और भगवान क्या कर रहे हैं उसके अंदर सांपों के बिस्तर पर आराम से शयन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस तात्पर्य बता रहे हैं प्रभुपाद की जो मायावादी लोग हैं वो हमेशा हर चीज को नेगेटिव देखते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि भला समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति सांप के ऊपर लेटा हुआ कैसे आराम से सो सकता है। और भगवान की निद्रा को क्या बोलते हैं, योग निद्रा। तो लेकिन भक्तों का तो विश्वास होता है कि भगवान जो है इस प्रकार से करते हैं, ब्रह्मा जी के यही रूप में दर्शन होते हैं और भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया गया है उनके चरण कमल से लेकर उनके सिर तक का। चतुर्भुज रूप के अंदर भगवान है जो लेटे हुए हैं और ब्रह्मा जी उनके दर्शन देख करके बड़े भाव विभोर होकर उनकी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। तो तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का जो शीर्षक ही है वो सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति स्तुति कि ब्रह्मा जी भगवान का बहुत ही सुंदर जो है गुणगान करते हैं और गुणगान करके वो शांत हो जाते हैं और तब भगवान जो है समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी जो है इस समय बहुत ही हताश हैं और निराश हैं, चिंतित हैं और आस पास इस डिवास्टेटिंग वाटर को, प्रलयंकारी जल को देख के बहुत खिन्न हैं। तो बड़े गंभीर और विचारपूर्ण शब्दों में भगवान जो है ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं बहुत ही गंभीर शब्दों के अंदर और बोलते हैं, भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, अर्थात वेद गर्भ अर्थात जो वैदिक ज्ञान की गहराइयों तक जा सकता है, जो पहुंचा है, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित कि आपको सृष्टि करनी है मेरी आज्ञा से, इसके लिए ना परेशान हो ना चिंतित हो, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है, डोंट हैव एंग्जाइटी, तुम्हें सृष्टि करने के लिए शक्ति बुद्धि जो चाहिए वह पहले ही प्रदान कर चुका हूं, तुम्हें जो जो वस्तु की आवश्यकता है मैं तुम्हें प्रदान कर चुका हूं, लेकिन तुम क्या करो अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो, इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे कि तुम्हें जो जो चीज आवश्यक है वो आपके हृदय में रिवील होती जाएगी, क्या चिंता मत करो। भगवान गीता में भी ये श्लोक कहते हैं और प्रभुपाद जी कोट करते हैं इस श्लोक को, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, बोल रहे हैं अर्जुन को श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां कि जो भक्त सततम नित्य युग से लगे हुए हैं किसके अंदर, भजतां प्रीतिपूर्वकं, मेरा भजन करने के लिए प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वकं मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें क्या करता हूं, बुद्धि प्रदान करता हूं, येन माम उपयान्ति ते कि किस प्रकार वो मेरे शरण में आ सके। और 7वें अध्याय में भी गीता में भगवान यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जहां होती है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पर ही जो है पोषित करता हूं, उसका पोषण करता हूं। तो कई बार हमें लगता है, हम देखते हैं आसपास में अपने पूरे समाज के अंदर कि वैज्ञानिकों ने ये क्रिएट कर दिया या गर्मी आ रही है तो हमने जो है वाटर कूलर्स या एयर कंडीशनर इत्यादि का निर्माण किया है। जय श्री राधा भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम। तो हम देखते हैं आसपास में, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है वो ये नहीं देख पाते कि ये सब वास्तविकता में इस सब के पीछे भगवान का ही हाथ है। किस प्रकार से कि भगवान ने ही इसके इंग्रेडिएंट सप्लाई किए इस भौतिक प्रकृति के अंदर, और भगवान ने ही वह बुद्धि दी जिसके द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण हो सके, है कि नहीं। जो वैज्ञानिकों के अंदर या सभी अन्य छोटे मोटे सृष्टिकर्ताओं को भी बुद्धि किसने दी है? भगवान ने दिए थे, ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान है ब्रह्मा जी को आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंतित मत हो। और इसके बाद जो है प्रभुपाद जी का 35वें तीसरे अध्याय के 9वें तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ऋषि माध्यम न बदनाति पापी ज्ञान स्वाम रजो गुण यन मनो मय निर्बद्धम प्रजा संतृतोपिते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसीलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे कि सृष्टि के कार्य में मैं रजोगुण में प्रभावित ना हो जाऊं, या फिर मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो जाए कि मैं करता हूं। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आप सृष्टि भी भली भांति कर पाओगे और आपको अहंकार भी आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। और जो है तो प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसी सृष्टि ऐसी बुद्धि भगवान ने प्रदान की कि आज भी कोई सृष्टि को जब देखता है तो बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि विधाता की सृष्टि कैसे है। जैसे हम सब घड़ी पहनते हैं, अभी ये कैसियो कंपनी का घड़ी है, तो ये कैसियो कंपनी के किसी वैज्ञानिक में या जो उनका R&D डिपार्टमेंट है उन्होंने ऐसा घड़ी नहीं निर्माण किया कि एक पुरुष घड़ी और एक स्त्री घड़ी का निर्माण कर दिया, है कि नहीं, और दोनों घड़ियां बाद में आपस में और घड़ियों को जन्म दे रही हैं, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान की सृष्टि ऐसी है कि ऐसा नहीं ब्रह्मा जी एक एक जीव को आगे उत्पन्न कर रहे हैं, एक पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया, उसके बाद में हर योनि के अंदर जो है अपने आप प्रजातियां बढ़ती जा प्रजातियां नहीं या जीव आत्मा जीव जो है बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कमाल की सृष्टि है कि नहीं, कि कितनी यूनिक है। ऐसा हम कई भौतिक प्रकृति में ऐसा नहीं देखते, यू नो कि ही ग्लास और शी ग्लास और दोनों ने उत्पन्न करके जो है और ग्लासेस निकलते आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम देखते हैं जब सृष्टि का किस प्रकार के भगवान है, और सृष्टि को देखेंगे तो अपने आप में एक अजूबा है, बिल्कुल विचित्र कि इतनी परफेक्ट जो है कैसे हो सकती है। कोई भी स्टडी करेगा तभी जो है, एक साइंटिस्ट है केल्विन, जिन्होंने जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े होंगे केल्विन टेम्परेचर इत्यादि, लॉर्ड केल्विन करके, तो उन्होंने एक स्टूडेंट बोला इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट इज द स्टेटमेंट इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। यदि आप थोड़ा भी ध्यान से सोचेंगे तो यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। इसी विज्ञान के द्वारा, यदि वास्तविकता में वैज्ञानिक हो तो ये भगवान में विश्वास करने के लिए आपको जो है बुद्धि प्रदान होगी ही होगी, ऐसा है। आपको भगवान में विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि कोई वास्तविकता में वैज्ञानिक है तो वो देखा सृष्टि से अधिक विज्ञान तो कहीं देखने को नहीं मिलता, है कि नहीं, कि हर चीज एकदम परफेक्ट है। या हम साइंस में, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा ये ऑक्सीजन साइकिल, तो जो सब अन्य जीवात्माएं वो क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और क्या उनका जो आउटपुट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, है कि नहीं। तो आप सोचिए कभी ऐसा होता है किसी एक फैक्ट्री का कचरा है और अन्य किसी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल हो, और उस दूसरी फैक्ट्री का जो कचरा है वो इस पहली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल हो, ऐसा होता नहीं कभी, है कि नहीं सृष्टि के अंदर। लेकिन हमारे शरीर से निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है हमारे लिए, वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, और उनका जो वेस्ट है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो ऐसे सृष्टि को तो हम अनेक उदाहरण से देख सकते हैं कि सृष्टि बहुत ही विचित्र है, और ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया ये सृष्टि को, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में इसी जो वर्ड यूज हुआ है अमोघ राधसा, उसका और खुलासा कर रहे हैं। ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में भी दिया गया है। ये तीसरा स्कंद है, वो दूसरा स्कंद है। भगवान द्वारा इस तरह अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजनाएं अच्युत हैं। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि दशम स्कंद में है, तो वे अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं, और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही है। अर्जुन भी इसी तरह मोहित होता पाया जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या है, भगवान ब्रह्मा जी की सारी योजनाएं क्या है, अच्युत है। और यही वर्ड यहाँ यूज हुआ, अमोघ राजसा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हिरण्यकशिपु को जो है क्या दिया, सबसे पहले तो उनके शरीर को जो है बिल्कुल सशक्त बना दिया। और इससे जस्ट पहले ब्रह्मा जी ने जो है पिछले दो श्लोकों में ये बोला है, हे कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और फिर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूं, तुम अपने अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हो, यह बहुत आश्चर्यजनक है। और फिर आगे और ग्लोरीफाई कर रहे हैं हिरण्यकश्यपु की तपस्या को, यहां तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके हैं, न भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन तीनों लोगों में ऐसा कौन होगा जल पिए बिना 120 वर्षों तक जीवन धारण कर सके। तो पहले काश्यप करके प्रोनाउंस करते हैं और 20वें श्लोक में दिति नंदन करके प्रोनाउंस करते हैं उन्हें, कि तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है, इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। और फिर कहते हैं असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, मैं देवताओं के देवी संसार संबंधित हूं जहां लोग मनुष्यों की तरह नहीं मरते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, चिंता मत करो, तुम्हारा जो अभिप्राय था तपस्या करने का वो पूर्ण होगा और मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। और उनकी जो है इस तपस्या को ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखिए महान भक्तों का ये जो है एक कार्य होता है महान आत्माओं का, कि वो जानते थे कि इसका हिरण्यकश्यप का अभिप्राय क्या है, लेकिन फिर भी जो उसकी तपस्या, उसकी धैर्य शक्ति है, उसका डिटर्मिनेशन है, संकल्प शक्ति है, उसका गुणगान कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये तुम्हारी बहुत विशेष क्वालिटी है। और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को जीवित किया। अभी एक बात और देखने लायक है कि तपस्या का परिणाम क्या होता है। यदि कोई तपस्या की जाती है दिव्य कॉज के लिए और उसके लिए किसी प्रामाणिक वरिष्ठ को प्रसन्न करने के लिए, उसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि तपस्या का अर्थ ही है किसी दिव्य उद्देश्य के लिए वॉलंटरी स्वेच्छा से कष्ट उठाना, वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंसेस फॉर अ हायर कॉज, कि किसी उच्च उद्देश्य के लिए कुछ कष्ट उठाना, इसी को तपस्या बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे इस वैष्णव प्रभु आए थे तो उन्होंने बोला तपस्या का अर्थ खाली कष्ट उठाना नहीं है, उसको तो अनशन बोलेंगे, है कि नहीं? बता रहे थे प्रभु जी वो तपस्या नहीं कही जा सकती कि यदि कोई धरना देता है या कुछ करता है तो उसे अनशन बोलेंगे, इट कैनॉट बी कंसिडर तपस्या। लेकिन किसी उच्च कॉज के लिए यदि की जाए, कोई संघर्ष किया जाए, उसे बोलते हैं तपस्या। तो यहां हम हिरण्यकश्यप की एक तपस्या का वर्णन देखते हैं, किस प्रकार हिरण्यकश्यप इतनी भीषण तपस्या की और उसकी तपस्या से कौन प्रसन्न हुए? ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब देखिए जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो चाहे हिरण्यकश्यप का पूरा शरीर नष्ट हो चुका था, मतलब निश्चित रूप से कठिनाइयां बहुत आई होगी उसे, आई है कि नहीं? पूरा शरीर चींटी से जो है खा लिया है सब, लेकिन फिर भी वो धैर्य पूर्वक उस कठिनाई को झेलते रहे। जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तभी प्रभु जी 23वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, यह कायाकल्प उसी कठोर तपस्या का परिणाम था। जैसे ही कोई वरिष्ठ प्रसन्न हो जाते हैं तो जो भी आपका अपेरेंटली लॉस था वो पूर्ण हो जाता है, ऐसा है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा भावनामृत सिद्धांत है कि यदि कोई अपने वरिष्ठ जनों को, गुरुजनों को प्रसन्न कर लेता है तो हो सकता है तपस्या से उसका कुछ नुकसान भी हुआ हो, लेकिन उसका वो नुकसान तो क्या, उससे कहीं अधिक उसको परिणाम प्राप्त होता है। तीसरे स्कंद भागवतम के हम देखते हैं स्वयंभू मनु की पुत्री जो राजकन्या थी, एकदम एक बालिका थी, बहुत ही सुंदरी थी, क्या नाम था उनका? देवहूति। और वो देवहूति माता का विवाह किसके साथ हुआ? एक ऋषि के साथ, कर्दम मुनि के साथ। कर्दम मुनि का तो प्रैक्टिकली अपना भजन कुटीर भी नहीं था, एक जंगल में रहते थे छप्पड़ के अंदर जो है, और वो इतने महान थे तपस्या में कि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उनके सामने और उनको वरदान दिया था क्या कि आज से तीसरे दिन स्वयं वो मनु स्वयं दूसरे दिन परसों स्वयं वो मनु स्वयं अपनी पुत्री के साथ आएंगे, उसका तुम्हारा विवाह होगा और मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र में रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान कपिल देव के रूप प्रकट होते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात उस प्रसंग के अंदर, आइडियल हस्बैंड और देवहूति माता चाहे वो राजकन्या थी, कर्दम मुनि की एक साधारण दासी की तरह इतनी सेवा करती हैं। क्योंकि कर्दम मुनि तो इतने कृष्ण भावना भावित थे कि जब वो समाधि में स्थित होते थे और भगवान पे ध्यान करते थे तो उनको ही पता चलता कितने दिन कितने हफ्ते कितने महीने बीत गए, ठीक है नहीं, उनको कोई आकर्षण नहीं था कि मेरा विवाह हुआ है तो मैं अपनी सुंदरी पत्नी की ओर देखू। लेकिन जो देवहूति माता थी वो एक निष्ठ होके कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी और कई वर्षों तक वो सेवा करती रही, सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि के अंदर, और कर्दम मुनि ने उनको देखा तक नहीं ऐसा है। और वो इतनी दुर्बल हो गई, इतनी पतली हो गई कई समय से उन्होंने, और पूरा उनके जो है अंग मलिन हो गए, केश शिथिल हो, केश बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं उसे, जटा बन गई इस प्रकार से। तो जब कश्यप कर्दम मुनि जो है समाधि से आंख खोला और देखा देवहूति को तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, ये तो वो देवहूति नहीं जिससे मैंने विवाह किया था, ऐसा है प्रैक्टिकली वो युवा अवस्था के अंदर वृद्ध दिखने लगी। लेकिन कश्यप मुनि जब देखा कि मेरे लिए इस राजकन्या ने इतनी तपस्या उठाई है, इतना कष्ट सहन किया है जो है, कश्यप तुरंत प्रसन्न हो गए और बोलते जो मैं तपस्या का वरदान है जो भगवत में मैंने प्रदान किया है वो तुम्हारे सामने मैं तुमको प्रदान करता हूं। प्रैक्टिकली कृष्णा कॉन्शियस लव ऑफ गॉड एंड पर्सोनिफाइड कर देवहूति के सामने थे। देवहूति ने कोई तपस्या नहीं की, भगवान को नहीं देखा, कुछ और नहीं किया, सिर्फ क्या किया, भगवान के प्रामाणिक भक्तों के एक निष्ठ होकर सेवा की और वो प्रसन्न हो गए, भगवत प्रेम उन्हें ऐसे ही प्राप्त हो गया। ऐसा यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायं सुवं सस्य यशस्य संध्या मंदे गुरुश्री चरणारविंदम। ऐसे ही एक ये तो था उदाहरण कि जब वरिष्ठ कोई प्रसन्न होते हैं तो उसका जो है क्या परिणाम होता है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी देवहूति ने अपने शरीर की मन की ज्यादा परवाह नहीं की कोई, तो हुआ क्या, अब कर्दम उसके आगे क्या हुआ, कर्दम मुनि ने तो देवहूति ने बोला कि मैंने तो कृष्ण प्रेम प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा नहीं की, वो तो जब प्राप्त होगा भी समय है उसके अंदर, तो जो है मेरी अभिलाषा है कि मुझे आपसे पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा। तो कश्यप मुनि ने बोला ठीक है वो तो सही बात है, और तभी लेकिन अब देवहूति इतनी जो है दुर्बल और मलिन से दिख रही थी तो कर्दम मुनि उनके मनोभाव को समझ गए और उनको बोला क्या करो, इस बिंदु सरोवर में जाके आप स्नान करो। वो स्नान करने गई तो उनका पूरा शरीर जिस प्रकार से विवाह के समय था बिल्कुल वैसा ही हो गया और अनेकों अनेक जो है अप्सराएं उस बिंदु सर प्रकट हुई, उनका श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र प्रदान किए इत्यादि जो। और फिर कश्यप मुनि ने एक पूरा जो है क्या बोलते हैं एक ग्रह का निर्माण किया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक विमान का निर्माण किया और देवहूति माता को संतुष्ट किया इस प्रकार से। अर्थात यदि कोई वरिष्ठ प्रसन्न होते हैं तो थोड़ा नुकसान भी हो यदि हमारा तो वो नुकसान जो है नुकसान नहीं रहता, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो जब भौतिक नुकसान में नहीं, आध्यात्मिक तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो तो अलग, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी उन्हें कोई जो है नुकसान नहीं हुआ ऐसा करके, हालांकि अपरेंटली उनके जीवन में बहुत कष्ट हो, ये कृष्ण भावना मंत्र का सिद्धांत है हम देखते हैं। लेकिन देवहूति अपने लिए ज्यादा नहीं चाहती थी और उन्हें मालूम था क्योंकि जो है भगवान प्रकट होंगे, लेकिन हिरण्यकशिपु यहाँ किसकी उपासना करें, भगवान की उपासना नहीं करते थे, भगवान के भक्त ब्रह्मा जी की उपासना करते थे लेकिन अपने निजी लाभ के लिए, तो ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे। लेकिन भागवतम में एक अन्य उदाहरण आता है ऐसी भीषण तपस्या का, चौथे स्कंद के आठवें अध्याय में ध्रुव महाराज का, और उनकी तपस्या का वर्णन भी जरा सुनेंगे तो बहुत विशेष है। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु तीन तीन दिन पर केवल कपित्त फल तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे श्री भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे हर तीसरे दिन। दूसरे महीने में छह छह दिन पर खाने लगे और क्या खाने लगे, सूखी घास और पत्ते। तीसरे महीने में 9वें दिन केवल जल पीते थे, चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाने लगे, केवल वायु 12वें दिन। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ थे, मानो कोई अचल ठूठ हो, ऐसे खंभा हो मान लीजिए, वैसे ही खड़े थे। इस प्रकार उन्होंने पर ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर दिया ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ना आए, तो समाधि का जो उन्नत अवस्था है वो प्राप्त कर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियां तथा उनके कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर श्री भगवान के रूप में स्थिर कर दिया। तो इस प्रकार 5 महीने जो है तपस्या की ध्रुव महाराज ने, इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी श्री भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग हिलने लगे। और जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी दाएं, तो जब पृथ्वी उनके भार से जो है दबकर जो है इस नीचे चली गई, तो ऐसी भीषण तपस्या अब ध्रुव महाराज ने की थी। और जब ध्रुव महाराज गुरुता में अर्थात ग्रेविटेशन में भगवान विष्णु से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के छिद्रों को बंद करने से समग्र चेतना तथा सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा, अतः वे श्री भगवान की शरण में आए। अब क्योंकि वो भगवान विष्णु की उपासना करे तो भगवान के पास आए, भगवान बचाइए, यहाँ हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के पास नहीं करते तो देवतागण सब ब्रह्मा जी के पास आए थे, आप बचाओ। और जब भगवान ने अपने सुंदर रूप का ध्रुव महाराज को दर्शन दिया तो क्या हुआ, ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, मुझे अपने पिता से या जो पिता मां से बड़ा राज्य चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी भगवान की थी, हालांकि बहुत इच्छाओं के साथ की थी, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, और क्योंकि परम पुरुष भगवान की भक्ति की थी तो क्या हुआ, उनके जो अल्टीरियर मोटिव्स थे वो सब समाप्त हो गए। और फिर ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, स्थान अभिलाष तपस्वी स्थितो हम त्वं प्राप्त बांदेव मुनिन्द्र गुहम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। बोले स्थान अभिलाष तपस्वी स्थितो हम, मैं तपस्या करा था, क्यों करा था, मुझे स्थान की अभिलाषा थी, कैसा राज्य चाहिए, अपने प्रपितामह ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा के पिताजी मनु पुत्र मनु के पुत्र थे उतान पाद प्रियपत और उनके पुत्र ध्रुव महाराज, तो ब्रह्मा से बड़ा राज्य स्थान अभी तपस्या से तो हम तुम प्राप्तवान, लेकिन मैंने क्या किया, तपस्या से आपको प्राप्त कर लिया, देव मुनिंद्र गुई हम जो देवताओं और मुनियों और इंद्र आदि के लिए दुर्लभ है उनको मैंने प्राप्त कर लिया, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्न, और बोल रहे हैं कि मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति हुई है, आप जो दिव्य रत्न के समान है, लेकिन मैं तो मूर्ख था कि किसके तलाश में था, टूटे हुए कांच के टुकड़ों के, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े कबाड़ी भी नहीं खरीदता है कि नहीं, और टूटे हुए कांच के टुकड़े अर्थात किसी काम के नहीं होते, व्यर्थ होते हैं, और यदि कोई इसके साथ कुछ छेड़खानी करता तो उसका हाथ भी कटता है ना, वो बिल्कुल बेकार होते हैं यूजलेस बल्कि हानिकारक भी होते हैं। तो ये भौतिक संपदा को वैसे ही वो जो है ध्रुव महाराज कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भौतिक वरदान के लिए तपस्या कर सकता है लेकिन वो है किसके समान, ऐसे भौतिक वरदान प्राप्त भी हो जाए तो क्या है, टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है, अर्थात नश्वर है, बेकार है, समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, और जिसके पास होते हैं उसका भी पतन हो जाता है उनके द्वारा, है कि नहीं, क्योंकि किसी के पास कुछ यश ऐश्वर्य होता तो वो स्वाभाविक है वो अहंकारी हो जाता है। त्वं प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गह्यं काचं विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नं स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरं न याचे, कि हे भगवान मैं क्या हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं कि मुझे जो प्राप्त होना था उससे कहीं अधिक गुना प्राप्त हो गए, आप स्वयं प्राप्त हो गए, वरम न याचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए, सोचिए हिरण्यकशिपु गलती से भगवान की तपस्या कर लेते, इसी प्रकार से मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो होता क्या, प्रहलाद महाराज उत्पन्न नहीं होते, ये कथा आगे नहीं बढ़ती, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तपस्या करनी हो किसी व्यक्ति को, चाहे वो बिना कामना के, चाहे सभी कामों से, चाहे मोक्ष के कामों से, क्या करनी चाहिए उसे, परम पुरुष भगवान की तीव्रेण भक्ति हो गए ना, उस भक्ति में जो है लगना चाहिए, उसी से व्यक्ति को जो है, क्योंकि सारे लाभ प्राप्त होंगे जो उसकी आवश्यकता है, वो नहीं जो उसको चाहिए या जिसकी उसको मांग है। भगवान जो है एक दुकानदार या बनिए के समान नहीं है, भगवान पिता है, परम पिता परमेश्वर है। कोई यदि एक छोटा बच्चा पिताजी के पास जाता है, पिताजी 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, पिताजी पूछेंगे क्यों? बोले सिगरेट लेनी है। पिताजी क्या करेंगे? एक झापड़ देंगे उसे, पैसा थोड़ी देंगे, है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा अगर दुकानदार के पास जाएगा, 10 रुपए देगा, दुकानदार क्या बोलेगा? बड़े आराम से लो सिगरेट, है कि नहीं? चाहे बोर्ड लगा रखा हो कि 18 वर्ष 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट बेचना, तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी खुशी खुशी बेचेगा, है कि नहीं? तो देवतागण जो है वो उन दुकानदारों की तरह है। आपने तपस्या की है तो वो बाध्य है आपको वरदान देने के लिए, लेकिन भगवान क्या करते हैं? जिसने उनकी उपासना की है, भगवान जो है उसके लिए हानिकारक उसे वरदान नहीं देते, चाहे वो मांग भी क्यों ना रहा हो उस समय। भगवान उसके मोटिव को प्यूरिफाई करते हैं और उसके बाद उन्हें वरदान देते हैं, जिस प्रकार सुदामा ब्राह्मण के साथ उन्होंने किया। तो ये जो अमोघ राजसा है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के लिए अमोघ राजसा ही अच्युत है, उनको अच्युत बनने या अमोघ राजसा बनने की शक्ति भी कहां से प्राप्त होती है? स्वयं भगवान से। ऐसा है कि उनकी शक्ति का स्रोत भी वही भगवान है। ये सृष्टि करने की शक्ति या उनके अच्युत बनने की शक्ति, उनकी योजनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी स्वयं भगवान से ही उनको प्राप्त होती है। तो फायदा क्या है, किसकी उपासना की जाए? भगवान की जाए, है कि नहीं? और यही कई आचार्यगण जो है अपने भजन में, ठाकुर भक्ति में अपने कई भजनों में बताते हैं कि सभी देवता गणों को, ब्रह्मा जी को इत्यादि जो है ये जो शक्ति है वो प्राप्त हुई है स्वयं भगवान से। तो जो है इसीलिए हमें भी तपस्या करनी हो, कुछ कठिन तपस्या करते हैं अपने जन्म में, तो दिव्य उद्देश्य के लिए करनी चाहिए और भगवान के लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है हम कभी सोमवार का व्रत करें, कभी मंगलवार का व्रत करें, है कि नहीं? 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वयं भगवान की उपासना कर ली आपने तो अन्य देवी देवता सब संतुष्ट हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद, आपसे वक्ता बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।